चलते हैं कब्र के बयान पे। मोमिन की मौत, हम इसके बारे में जान चुके। अगर आप खुलासा करना चाहें तो कब्र 14वीं के चांद जैसी मुनव्वर कर दी जाती है। खूबसूरत चेहरे वाला इंसान उसके पास आ जाता है और इसी तरह जन्नत का खुशबूदार लिबास पहनाया जाता है, और इसी तरह कब्र में वो शख्स आकर उसको कहता है कि मैं तेरे आमाल हूँ। सवाल किया है इन्होंने कि जब मोमिन की मौत इतने आराम से आ जाती है कि जैसे मशकीज़े का मुंह खुला रह गया, तो फिर सकरातुल मौत की क्या हैसियत है। तो देखिए कि हमने अपने पिछले सेशन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफातुल मरस को भी थोड़ा सा देखा था, और आपको जितनी तकलीफ़ हुई उतनी आज तक किसी को नहीं हुई। तो इससे पहली बात तो ये, काट दीजिए जहनों से भी और कापियों में से भी, अगर कहीं लिख के रखी है कि बंदे को गुनाहों की वजह से सख्ती होती है मौत पे, क्योंकि अल्लाह के नबी तो मासूम अनिल खता थे। आपको तो अल्लाह ताला ने पाक किया हुआ था हर चीज़ के साथ। पहली बात तो ये है, दो चीज़ें होती हैं, एक है गुनाहों की माफ़ी और एक है रफ़ाए दरजात, यानी कफ़ारा सय्यात और रफ़ाए दरजात। अम्बिया कराम को, जिसमें हमारे अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत बाकी अम्बिया कराम, इसी तरह सालेहीन, सिद्दीकीन, शुहदा, शुहदा जो एक्चुअल शहीद हैं उनको तो बिल्कुल तकलीफ़ ही नहीं होती। यानी वो लोग जो दुनिया में अपना मामला बड़ा नकद का रखते हैं, कोई फ़र्ज़ उनका पीछे नहीं है जिसके ऊपर उनको अब सज़ा मिले कज़ा की सूरत में, कोई उनके ऊपर ज़कात नहीं थी, कोई नमाज नहीं थी छुट्टी हुई, हकूक़ुल इबाद का कोई मामला नहीं था, ऐसे लोगों को तकलीफ़ क्यों आती है? ताकि अल्लाह ताला उनके दर्जे और बुलंद करे। देखिए अल्लाह ताला जो चाहे कर ले। बड़ी प्यारी रिवायत है, इस वक्त मुझे उसका हवाला याद नहीं लेकिन सही रिवायत है कि अल्लाह सुबहाना ताला को किसी बंदे से मोहब्बत होती है और अल्लाह ताला उस मोहब्बत में उसको जन्नतुल फिरदौस में नाम उसका लिखवाते हैं। अल्लाह ताला कर सकते हैं, फ़ालु लिमा युरीद है, लेकिन अल्लाह ताला अल अदल भी हैं, आदिल भी हैं। जब उस बंदे की तरफ फरिश्ते नज़र डालते हैं तो उसके अमल वो नहीं होते कि जो उसको जन्नतुल फिरदौस का हकदार करें। अब क्या किया जाए? अल्लाह ताला का फैसला तो सादर है। अब उसके ऊपर कोई मुसीबत डाली जाती है, उसी में निज़ा की सख्तियाँ भी हैं। उस निज़ा की सख्तियों से दर्जे बुलंद होते जाते होते जाते, और बिलाखर वो जन्नतुल फिरदौस के काबिल हो जाता। इतनी बात क्लियर है? अम्बिया कराम इसी में, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझे वसीले का मुकाम मिलेगा जो सिर्फ़ एक ही बंदे को मिलेगा। अब उस दर्जे तक पहुंचने के लिए आपको निज़ामित सख्तियाँ आईं। रहेगी बात के खुशबू की तरह, तो लिखिए, नंबर एक पर्सन टू पर्सन मामला है। दुनिया में आप देखते हैं कुछ लोग बैठे बातें करते हैं, साथ ही सर डाल देते हैं, बड़े नेक होते हैं। आपने सुना कोई के नमाज में सजदे के दौरान जान चली गई? पिछले सालों में कोई अरब आलिम थे तो दर्स देते देते एकदम ऐसे हिले हैं, कुर्सी हिली है तो वो जान चली गई। अब ज़ाहर तो उनको कोई तकलीफ़ नहीं, वो तो पढ़ पढ़ा रहे थे, तो ये भी एक कैफियत होती है। और कुछ बहुत नेक लोगों को आप देखते हैं कई कई साल मुश्किलों में गुजरते हैं, पर्सन टू पर्सन मामला है। ठीक है, एक बात ये है कि वो निकलती तो जान बिल्कुल मशकीज़े से ऐसी, लेकिन उससे पहले की। दूसरी बात लिखिए, जान निकलते वक्त वो कैफियत है, लेकिन उससे पहले तकलीफ़ें आती हैं। बात समझिए कि तकलीफ़ें पहले गुजर जाती हैं, जब रूह निकलनी होती है पता ही नहीं चलता। और अमूमन आप देखेंगे लोग यही कहते हैं, रूह निकलते हुए पता नहीं चला, ऐसे ही है ना? तो ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है। अब सवाल ये है कि फाजिर, देखिए लफ्ज़ काफिर को पहले समझ लीजिए, क्योंकि हम इस लफ्ज़ के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा खुले दिल से बातें करते हैं, और अल्लाह से डरना चाहिए कि किसी के साथ भी क्या मामला हो, कैसा मामला होगा। तो आप देखिए कि अल्लाह ताला ने काफिर लफ्ज़ को जो इस्तेमाल किया है कुरान में और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, ये सारी बातें हैं ना, तो उसमें ये जहन में रख लीजिएगा कि काफिर के बड़े दर्जे हैं। जैसे ब्लैक से ग्रे, ग्रे से वाइट होने में कई शेड्स होते हैं ना, इसी तरह कुफर के दर्जे हैं। कुछ तो हैं एथियस्ट जो अल्लाह को मानते ही नहीं, उसके वजूद का इनकार किए फिरते हैं, उनको तो आप पीछे कर दीजिए। कुछ हैं कि उनके सामने कलमे हक पेश किया जाए और वो इस्लाम को ठुकरा दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के सारे मुशरिकीन ऐसे थे जो मुसलमान नहीं हुए, जैसे अबू जहल और इसी तरह अबू लहब वगैरह के नाम आप लिख लेते हैं। हक पेश किया जाए फिर कोई उसको रिजेक्ट कर दे, उसको काफिर कहते हैं, जो इस वक्त हमारे लिए समझना इतना ही काफ़ी है। इसके अलावा फिर मुसलमान होते हुए कई अमल हैं जो बंदे को कुफर पे पहुंचा देते हैं। नमाज का तारिक काफिर हो जाता है हदीस की रोशनी में, तो लिहाजा हम इस वक्त उसकी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन अहदीस से हमें काफिर की मौत का क्या मंजर दिखता है, आइए ज़रा इसको भी सुनिए, क्योंकि हकीकत है, सुनना पड़ेगा। आप कहेंगे हम क्यों सुने, हम तो मोमिन हैं। पहली बात है, मोमिन हैं कि नहीं, मुस्लिम हैं। अल्लाह ने सूरह हुजरात में कहा कि अपने आप को मोमिन ना कहा करो, तुम अभी मुस्लिम हुए हो, और मुस्लिम पहला दर्जा होता है, मोमिन उसके बाद है, फिर उसके बाद मुहसिन है। हम क्यों सुने? नंबर एक, जो आप और मैं वेस्ट में रहते हैं, और वल्लाही जो किसी भी कुफार की बस्ती में रहता है, चाहे पाकिस्तान के इर्द गिर्द कहीं है या यहाँ कहीं भी हैं, उसके दिल में दावा का दर्द पैदा होता है इस बात को सुन के। कुफार की यह हालत क़यामत के दिन जो होने वाली है, मैं और आप जब जानते हैं, और अभी हम सुनेंगे, मैं आपको हदीस में से पढ़ के सुनाऊंगी इंशाअल्लाह ताला, तो हमारे दिल में ये तड़प आनी चाहिए कि अल्लाह हमारे इर्द गिर्द वाले इस बुरे अंजाम से दोचार ना हो। हम दावत दें, उनको इस्लाम का खूबसूरत नमूना बनकर दिखाएं ताकि वो इसको मान लें। आप देखिए कि हर बंदा अपने मज़हब के मुताबिक जो कर रहा होता है वो उसी में खुश होता है, लेकिन जब आपको पता लग जाती है ना चीज़ें, तो बिल्कुल वही कैफियत है जैसे पानी का ग्लास है, आप पीते हैं तो घट घट पी जाते हैं। उसी पानी को अगर लेबॉर्ट्री में किसी बड़े से माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाए तो उसमें जर्म्स हैं, तो वो तो नहीं पिएगा, डॉक्टर नहीं पिएंगे वो ख़राब चीज़। हम खा पी लेते हैं, हमें दिखती नहीं है। जिस तरह इलेक्ट्रिशियन को अंदर की खराबियां दिखती हैं, उस चीज़ की जोड़ तोड़ दिखते हैं, सच्चे दीनदार को कुफर और उसके साथ की जो चीज़ें हैं उसके बुरे अंजाम दिखते हैं। इसलिए नंबर एक, वो दावत उनको देगा, दूसरी बात है उनके तौर तरीके नहीं अपनाएगा, उनकी दोस्तियां नहीं अपनाएगा, ऐसी दोस्तियां कि जिसमें आपके ऊपर उनका रंग आ जाए, और ख़ास तौर पे फिर जब दोस्तियों की हद तक ऐसी हो तो आप कैसे उसके साथ खुश हो के उसको मुबारकबादें दे सकते हैं उसके किसी त्यौहार की खुशी की, जबकि आपको ये अंजाम में बद दिख रहा है। और बड़ी बात है, अलविला वल बरा, दीन इस्लाम का एक पूरा रुकन है, ईमानियात में इसका ताल्लुक है। इसी सीरीज़ की एक बुक है, आप चाहेंगे तो आपको वो भी पढ़ा दी जाएगी, जो चाहेगा उसके साथ जाके पढ़ा दूंगी, अलविला वल बरा। आज के दौर में हर एक को पढ़ने चाहिए वो, कि मोहब्बत दोस्ती और दुश्मनी का मुकाम क्या है, मेयार क्या है। सहाबा कराम ने बहुत सारी दलीलें दी, अपने अपने सगे रिश्तेदारों को अल्लाह के नाम पर उन्होंने छोड़ा और इसी तरह अल्लाह से जोड़ा, लेकिन हदीस में क्या आता है, जब काफिर की मौत का वक्त आता है तो इसकी रूह कब्ज़ करने के लिए इंतहाई खौफनाक स्याह चेहरे वाले फरिश्ते टाट का बदबूदार कफन साथ लेकर आते हैं, और आते ही इसे ए खबीस रूह, ए मकज़ूब रूह के अल्फाज से ख़िताब करते हैं, इसे अल्लाह ताला के गज़ब और जहन्नम के अजाबों की बिशारत देते हैं। काफिरों की रूह खौफ और डर की वजह से जिस्म से निकलना नहीं चाहती, क्या आप इमेजिन कर रहे हैं, साथ साथ सोच रहे हैं? अल्लाह अकबर। आप देखिए, कभी टीवी में आपने किसी शख्स को देखा हो कि पुलिस उसको हथकड़ियां बांध रही है और वो भाग रहा है, छुप रहा है, इधर से उधर जा रहा है, कैसे चाहेगा वो बंदा जाना जिसको हकीकत में नज़र आ रहा है कि आज मेरे साथ ये होने वाला है, आज मेरे साथ ये बातें होंगी, इसलिए कि उसको अपना बुरा अंजाम दिख रहा है, तो वो नहीं जाना चाहता, लेकिन अल्लाह ताला के फरिश्ते जैसे पुलिस के लोग होते हैं इसी तरह से वो उसको लेकर जाएंगे, और इसी तरीके से उनके साथ जो मामला होगा वो सुन लीजिए। अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हाल हो, और अल्लाह ताला बचा के रखे, आपकी मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई वक्त ना आए कि जिसको आप और मैं अपनी आँखों से ऐसी चीज़ों को देखें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से हमें बचा दिया सिर्फ इसलिए कि हमारे माँ बाप मुसलमान हैं, इसलिए कि आपके मेरे माँ बाप ने अल्लाह ताला की रहमत से तौहीद में आँख खोली और हम किसी भी ऐसी जगह से नहीं गुज़रे जहाँ आज के रिवॉर्ड्स गुज़र रहे हैं। तो अपने आप को हमेशा इन चीज़ों के साथ रखिए कि कुफर के साथ दुश्मनी, काफिर के साथ हमदर्दी। लिखिए ये जुमला, काफिर के साथ हमदर्दी और कुफर के साथ दुश्मनी होनी चाहिए, क्योंकि कुफर ख़त्म हुआ तो हमारे दीन के भाई हैं, सारे ही लोग पहले कुफर पे ही थे ना, अल्लाह ने ऐसा ऐसा उनको, यानी जो भी अल्लाह के नबी के इर्द गिर्द के लोग थे जो बाद में बड़े बड़े सहाबा बने, तो मुशरिक तो थे ही कम अज़ कम, तो बहरहाल। और फरिश्ते क्या कहते हैं, ए खबीस रूह, ए मकज़ूब रूह, इन अल्फाज से उसको मुखातिब करते हैं। اسے اللہ کے غضب اور جہنم کے عذابوں کی بشارت دیتے ہیں۔ کافر کی روح خوف اور ڈر کی وجہ سے جسم سے نکلنا نہیں چاہتی، فرشتے اسے اس طرح کھینچ کر نکالتے ہیں جس طرح کانٹے دار لوہے کی سلاخ گیلی اون سے زبردستی کھینچ کر نکالی جاتی ہے۔ کر کے دیکھیے گا یہ تجربہ بھی کسی وقت، رواں رواں لگ ہو جائے گا اس اون کا۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے والنازیاتی غرقا، قسم ان فرشتوں کی جو کفار کی جان جسم میں ڈوب کر نکالتے ہیں، وہ نکلنا نہیں چاہتی لیکن فرشتے زبردستی نکالتے ہیں۔ ایک اور ریفرنس نوٹ کیجئے، سورۃ الانعام 93، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ ترجمہ سنیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کافر ہوتا کون ہے، اس میں اس کی ڈسکرپشن آ رہی ہے۔ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جب وہ موت کی جان کنی میں مبتلا ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں رسوا کو عذاب دیا جائے گا جو تم ناحق اللہ کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ یہ ہے ان کا جرم، رات جاتے کی باتیں کرنا۔ اس وقت کافر کی روح سے اس قدر غلیظ بو آتی ہے، یعنی بدبو آتی ہے، جس طرح کسی گلے سڑے مردار سے انتہائی مکروہ بدبو آتی ہے۔ فرشتے جب اسے آسمان کی طرف لے جانے لگتے ہیں تو آسمان کے فرشتے وہیں سے اس کی بدبو محسوس کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی خبیث روح آسمانوں کی طرف لائی جا رہی ہے۔ چنانچہ جب موت کے فرشتے کافر کی بدبودار روح کو لے کر آسمان اول پر پہنچتے ہیں تو دستک دینے پر پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے، جواب میں موت کے فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ آسمان کے فرشتے جواب دیتے ہیں اس خبیث جسم کی خبیث روح کے لیے کوئی مرحبا نہیں، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اسے ذلیل کر کے واپس زمین پر بھیج دو۔ چنانچہ فرشتے اسے آسمان اول سے ہی زمین پر پٹخ دیتے ہیں۔ ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کا نام سجین یعنی کافروں کی فہرست میں لکھ دو، اس کے بعد اس کی روح سوال و جواب کے لیے دوبارہ اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ قبر میں جانے کے بعد مردے زندہ کیے جاتے ہیں۔ اب ذرا امیجن کیجئے قبر میں دفنا کے لوگ چلے گئے، اور یہاں یہ بھی نوٹ کیجئے گا چاہے کسی نے اس کو جلا دیا، کسی نے پانی میں بہا دی اس کی راکھ، کسی نے اس کو کچھ کر دیا، لیکن قبر عالم برزخ کا نام ہے۔ مرنے سے لے کر قیامت کے پہلے سور کے بیچ کے ٹائم کو عالم برزخ کہتے ہیں اور اسی کو قبر بھی کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں لفظ قبر کے ساتھ یہ مٹی کی ڈھیری آتی ہے، ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو۔ جو جہاں مر گیا درندے نے کھا لیا اس کا پیٹ، اس شخص کی قبر بن جائے گا۔ خیر، مردے کو قبر میں اٹھایا جاتا ہے۔ منکر نکیر جب کافر کے پاس آتے ہیں تو وہ سب گھبرایا ہوا اور خوف زدہ ہوتا ہے۔ منکر اور نکیر پوچھتے ہیں من ربو کا، من نبیو کا، ماں دینو کا؟ کافر جواب میں کہتا ہے ہا ہا لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ منافق آدمی کہتا ہے میں نے جو کچھ لوگوں کو کہتے سنا بس وہی میں بھی کہتا ہوں۔ منافق کے اس جواب کے بعد جنت کی طرف دروازہ کھول کر اسے جنت کی نعمتوں کی ایک جھلک دکھائی جاتی ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ جنت جس سے اللہ نے تمہیں تمہارے نفاق کی وجہ سے محروم کر دیا۔ یہ لفظ نفاق سے سمجھ آئیے، کلمہ گو شخص بھی کافر ہو سکتا ہے۔ قرآن میں کئی مقامات ہیں، ادھر ضرورت نہیں ڈیٹیلز میں جانے کی، کہ جہاں ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، منافق اور کافروں کو کئی جگہ ملا دیا جائے گا، کیونکہ دنیا میں بھی منافق کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کفر کی رسمیں اور طور طریقے اور لائف سٹائل چھوڑنا نہیں چاہتا۔ تو بہرحال اس کو دکھائی جاتی ہے کہ اگر تم واقعی سچے مومن ہوتے تو یہ جنت تمہیں مل جاتی۔ پھر اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے اسے آگ کا عذاب دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی سے جہنم میں اس کی قیامگاہ دکھائی جاتی ہے۔ تب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اسے آگ کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو۔ اندھے اور بہرے فرشتے اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اسے لوہے کے گرزوں سے مارتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گرز سمجھتے ہیں، بڑا سا ایک ہنٹر ڈنڈا، اس قدر وزنی ہوتا ہے کہ اگر پہاڑ پر مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ इसके साथ काफिर पर 99 असदहे यानी कोबरा मुसल्लत कर दिए जाते हैं, जिसे क़यामत तक डसते रहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, कब्र का अजदहा इस कदर जहरीला होता है कि अगर ज़मीन में एक दफ़ा फूंक मार दे तो ज़मीन पर सब्ज़ा उगना बंद हो जाए। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हु। इन अजाबों के साथ एक और अजाब भी इसको दिया जाता है, और वो क्या है कि कब्र की दीवारें बार बार काफिर को शिकंजे की तरह अपने दरमियान जकड़ती रहती हैं। इस तरह से अल्लाह के नबी ने अपने हाथों को यूँ दिखाया और फरमाया कि बेनवाजी की कब्र कैसे घुटती है, कि ये पसलियाँ हैं रिब्स, और आपने फरमाया कि ये ऐसे हो जाती हैं। तो आप देखिए क्रश होगा नहीं होगा, अंदर से क्या निकलेगा इंसान के। हर बार इसकी पसलियां दूसरी तरफ की पसलियों में धंस जाती हैं। ये सारे अजाब क़यामत तक काफिर को मिलते रहते हैं। कब्र में काफिर के पास एक इंतहाई बदसूरत, बदबूदार और डरावनी शक्ल का इंसान आता है। ये पूछता है, तुम कौन हो? वो कहता है, मैं तेरे अमाल हूँ और तुझे बुरे अमाल की खबर देने आया हूँ। काफिर खौफजदा होकर कहता है, ऐ मेरे रब, क़यामत कायम न करना। यूँ काफिर मौत के लम्हे से ही अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हो जाता है और क़यामत कायम होने तक मुसलसल इन सारे अजाबों में मुब्तला रहता है। अल्लाह ताला आपको मुझे हर एक को इस अजाब से महफूज रखे। आपने मोमिन की रूह के बारे में जब सुना था तो क्या था कि मोमिन आदमी की रूह को इल्लीजीन, इल्लीजीन आसमानों पे बुलंदियों पे हैं, अलूफ से आलिया अली, ये वही नाम है, वहाँ ठहराया जाता है, जबकि कुफ्फार मुशरिकीन और मुनाफिकीन की रूहों को सिज्जीन में बंद किया जाता है। सिजिन क्या है? सिजिन, सिजिन कहते हैं कैद को, प्रिजन, जेल, और यहाँ इनकी रूहें क़यामत तक क़याम करेंगी। और सिजिन किताब का नाम है जिसमें कुफार और मुशरिकीन के नाम लिखे जाते हैं, और ये उस जगह का भी नाम है जहाँ बुरे लोगों की रूहें क़यामत तक बंद की जाती हैं। अब बताइए, जो सिजिन की जेल में बंद हैं, क्या उनकी रूहें वापस आती हैं? या एक साइड नुक्ता लिखें, आगे अलग से इस पर बात भी कर लेंगे कि रूहें मरने के बाद वापस नहीं आती। आप खाने पकाएं, आप उनके नाम के जो मर्जी नजरों न्याज करें, क्या इल्लीजीन की नेमतें छोड़कर मोमिन की रूह वापस आना पसंद करेगी सिर्फ आपके हलवे मांडे खाने के लिए? और क्या सिज्जीन के चौकीदार या वहां से रूहों को वापस आने देंगे अल्लाह के फरिश्ते? अब बस बात है, बेइल्मी की बात है। सुनते सुनाते हम अपने माशरे में ये बातें बचपन से इतनी सुन चुके कि हमें अब वो सच महसूस होती हैं। तो कब्र में तो बंदे का जिस्म जाता है ना, रूह या तो इल्लीजीन में होती है या सिज्जीन में होती है। और ये सारी सही रिवायतें हैं। मैं बीच में कोशिश भी कर रही हूँ कि कोई अपनी बात ना कहूँ, कोई कमेंट भी ना दूँ, सिर्फ एलेबोरेट करने के लिए दो चार लफ्ज़ कभी बोलती हूँ, ताकि आपका मेरा ईमान हो कि दुनिया के सबसे सच्चे इंसान की ज़ुबान से ये बातें हैं, और जिसके बारे में कुरान खुद फरमाता है कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा। सूरत नजम की आयत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हवा यानी अपनी ख्वाहिश से कोई बात नहीं करते थे, जिस चीज़ की उनको वही की जाती थी वो वही बोलते थे। तो अल्लाह के नबी की तो खामोशी भी कानून है, यहाँ तो आपके अल्फाज हैं, और कोई ना हदीस का इनकार नहीं कर सका आज तक। और ये सारी सेहत के दर्जे की सही रिवायात है। कोई इस कोर्स में आपको कोई अबस रिवायत या मनगढ़ंत सिर्फ एक जोश दिलाने या रुलाने के लिए ऐड नहीं की गई, पूरे शरह सदर के साथ ये बातें हैं। अब जो लोग फिर कहते हैं कब्र का अजाब नहीं, कब्र क्या होगी, तो उनकी मर्ज़ी। आगे एक पूरा टॉपिक दूंगी आपको कि अजाब कब्र है कि नहीं और उसके दलाइल, यानी इस पूरी सीरीज में आप पढ़ते जाइए, आपको तकरीबन हर सवाल का जवाब मिलता जाएगा जो कि अमूमन हमारा कब्रों के मुतल्लिकात से होता है।